प्रकाश वाक्य की पुस्तक को देखते हैं, पूरी पुस्तक का अगर थीम देखें तो प्रभु यीशु अनंत का राजा और वो सर्वदा का राजा है। वो अनंत का राजा है और सर्वदा राज करेगा। प्रकाश वाक्य उसका 17 अध्याय उसके 14 पद के अनुसार ये प्रकाश वाक्य का थीम है। तो जब हम इन प्रकाश वाक्य पुस्तक को देख रहे हैं, हमने देखा था कि प्रकाश वाक्य पुस्तक का मतलब क्या है, कि बातें जो छपी हुई हैं वो प्रकाश वाक्य में खोली जा रही हैं और एक एक परत करके, जैसे हम एक प्याज को लेते हैं और प्याज को लेके छिलके को उतार करके एक एक परत को निकालते हैं, स्थिति देते हैं, ठीक इसी प्रकार से प्रकाश वाक्य की पुस्तक भी है कि हम एक एक परत को निकालते हैं और उसमें देखते चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर इस प्रकाश वाक्य की पुस्तकों में सबसे पहले आरंभ करते हुए कलीसिया से बात करता है। और हमने देखा था प्रकाश वाक्य की पुस्तक जो है, परमेश्वर ने दर्शन, वो दर्शन जो है वो अपने पुत्र तक पहुंचाया है, पुत्र ने स्वर्गदूत तक पहुंचाया है, स्वर्गदूत ने यूहन्ना को दिया है और यूहन्ना ने उसको लिखा है, मुझको और आप तक पहुंचाया है। ये क्रम है। परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर का दर्शन था, परमेश्वर ने उस दर्शन को, जो क्या दर्शन, कि ठीक है अब किस प्रकार से आगे दुनिया बढ़ेगी। और मैंने पिछली बार बताया था कि प्रकाश वाक्य की पुस्तक को जब हम अध्ययन करते हैं, कलीसिया को हम देखते हैं, तो जो 7 कलीसियाओं को पत्र लिखे गए हैं वो 7 काल है, पीरियड है, जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद कलीसिया की स्थापना से लेके चलते चले जा रहे हैं और अभी हम जो लगभग 6 काल में चल रहे हैं। लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत है। क्यों इन्फॉर्मेशन बहुत? क्योंकि जब कलीसिया के बारे में बात करते हैं, प्रकाश वाक्य की पुस्तक में आते हैं और कलीसिया के बारे में, तो कलीसिया के बारे में हमें जानना है, तब हम देखते हैं क्यों प्रभु उनसे बात कर रहा है। वो उस समय के लिए थी, आज के लिए है और जब तक संसार रहेगा तब तक के लिए है। तो परमेश्वर तब और अब, परमेश्वर तब बात कर रहा है लेकिन तब के साथ साथ अब। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम प्रकाश वाक्य में आगे बढ़ते चले आते हैं, कुछ कुछ बातें खुलती चली आती हैं और खुलता आगे बढ़ता चला जाता है। हमने पिछली बार देखा था किस प्रकार से ऐतिहासिक रीति से कौन कौन सी घटना घट गई और किस प्रकार से लोगों ने अपने जीवनों को बलिदान किया, और उस घटना में हमने रिफॉर्मेशन को लाने वाले, धर्म विज्ञान का सुधार करने वाले काली पार्क के बारे में देखा था कि किस रीति 86 वर्ष की आयु में भी जब उसको आग में खड़ा किया गया, उसने कहा ठीक है 86 वर्ष तक मेरा परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग बना रहा, उसने मेरे साथ कभी इनकार नहीं करा, मैं चाहे मर जाऊं कुछ भी हो जाऊं मैं उसका इनकार नहीं करूंगा। और बिना उसको बांधे वो ऐसे आग पे खड़ा गया और उसको पूरी तरह जला दिया गया। तो हमने उन इतिहास बहुत सारी चीजें हैं जब हम देखते हैं उस पीरियड में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन एक एक दो दो घटनाएं मैं आपके सामने रखता हूं। पर सच है हर कलीसिया के साथ बात जुड़ा हुआ है। आज जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज हम तीसरी कलीसिया में जाना चाहते हैं जो पिरगमुन की कलीसिया है। प्रकाश वाक्य उसका 2 अध्याय 12 पद से लेकर के 17 पद तक। सो ये पिरगमुन की कलीसिया तीसरी कलीसिया है, इसके बारे में हम देखना चाहते हैं। और इस कलीसिया के लिए अगर कहा जाए, ये कलीसिया का जो मुख्य थीम होगा, कलीसिया जो शैतान के सिंहासन पर है, कलीसिया है लेकिन शैतान के सिंहासन पर, अर्थात शैतान जो सिंहासन है उस पर बैठी हुई है। और बहुत सारी कलीसिया का स्पीड जो था लगभग, लेकिन लोगों का मानना है कि 314 से लेकर के 590 तक का जो लगभग पीरियड था वो इस कलीसिया के बारे में बताता है। किस रीति से प्रभु यीशु मसीह जब ये यूहन्ना से लिखवा रहे हैं और यूहन्ना लिख रहा है, तो पहली बात वो कहता है पिरगमुन की कलीसिया उस दूत को लिख, उनको उन तक ये पहुंचाया जा रहा है, क्या संदेश पहुंचाया जा रहा है, जिसके पास 2 धारी तलवार है। किसके पास? प्रभु यीशु मसीह पास। हमने आरंभ में ही पहले अध्याय में इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के कई टाइटल इसमें दिए, उपनाम दिए गए। पहले हम करीब 14 नाम उपनाम के देख चुके हैं और असंदिग्ध थे, लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि जिसके पास 2 धारी तलवार है। वो ये कहता है 2 धारी तलवार का मतलब क्या है, कौन है? ठीक है, परमेश्वर का वचन तलवार की ओर संकेत करता है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 12 पद में क्यों कहता है कि वचन जो 2 धारी तलवार के समान है और जो मनुष्य के गुर्दे को और हृदय को आर पार छेदता और भेदता है। सो परमेश्वर का वचन की तुलना तलवार से की गई है। लेकिन 2 धारी तलवार का मतलब क्या है? इधर भी धार है, उधर भी धार है, इधर भी मारता है, इधर से मारता है, इधर से मारता है, उधर से मारता है, ये 2 धारी तलवार है। एक धार उस चीज को प्रकट करती है कि उसमें, उस धार के द्वारा मनुष्य जो पाप के जंजीर में बंधा हुआ था, पाप में बंधा हुआ था, वो तलवार ऐसी तलवार है कि मनुष्य को उस पाप के बंधन से आजाद कराती है, अलग करवाती है, पाप कर उसको काट देती है। ताकि मनुष्य से छूट करके अलग हो जाए। जब तक हम पाप की जंजीर से छुटकारा नहीं पाएंगे, हम उद्धार में नहीं प्रवेश करने पाएंगे। मनुष्य इस संसार में, हम बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन में है और परमेश्वर के वचन को हमें बार बार आपके साथ रिपीट करना है, ये हमारे कर्तव्य है और इसको समझना है। इसीलिए सातों कलीसिया को लिखते हुए यूहन्ना ने, परमेश्वर ने लिखा यूहन्ना ने कि जिसके सुनने के कानों सुन ले। सातों कलीसिया को ये चेतावनी की है, तुम्हारे घर सुनने के कान है, तुम सुनो। सुनने का मतलब क्या है? सुन के इग्नोर मत करो, इस कान को सुन के दूसरे कान से ना निकाल दो। पिछली बार मैं उदाहरण समझा रहा था, लेकिन उसको तुम सुन के उसको गंभीरता से अपने जीवन में लो, पालन करो, उसको अपनाओ, उस पर विश्वास करो, उस पर चलो। ये परमेश्वर की इच्छा है। और तब वो कहता है जो जय पाए, ये भी सातों कलीसिया में लिखा है, के लिए लिखा है, जो जय पाए उसको मैं ये पुरस्कार दूंगा। और हर कलीसिया के लिए, वो उन विश्वासियों के लिए उसने अलग अलग उपहार रखे हैं। जब हम इन सात कलीसियों को देखते हैं और उन उपहारों को देखते हैं या उन इनाम को देखते हैं, उन पुरस्कार को देखते हैं, तो देखते हैं परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए कितने अधिक पुरस्कार रखे हुए हैं। यहाँ पर कठिनाई है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घटी है, यहाँ पर कमी है, यहाँ पर संघर्ष है, लेकिन अगर हम विश्वास में बने रहते हैं तो एक दिन जब आएगा, जब हम प्रभु के पास आएंगे, तो उससे मेरे और आपके लिए बहुत सारे इनाम या बहुत सारे पुरस्कार रखे हैं, जिससे वो मुझे और आपको सुशोभित करेगा। और इससे बढ़कर कोई आशा नहीं है या इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है। एक धावक दौड़ता है, इस आशा से दौड़ता है कि अपनी दौड़ पूरी करने के बाद वो पुरस्कृत पाएगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, तो एक धनवार जो है वो जो मनुष्य को पाप के बंधन से अलग करवाती है, कटवाती है, अलग करवाती है, ताकि वो उस उद्धार को पा करके परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ सके। और ये पर्गमन की कलीसिया में अभी हम देखेंगे जो आगे है। तो कहता है दो धारी, दूसरी तलवार वो है जो अगर मनुष्य पाप के बंधन से अपने आप को अलग नहीं करेगा या नहीं करता है, उसमें बंधा रहता है, तो उसका वो न्याय की ओर संकेत करता है। दूसरी धार न्याय में प्रवेश करा देती है, जो दंड है। सबने पाप किया, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो प्राणी पाप करेगा निश्चय मर जाएगा। अगर मेरा और आपका जीवन पाप में है, पाप से छुटकारा नहीं पाया, तो हम उद्धार से वंचित हैं। अगर हमने पाप से छुटकारा पा लिया और हम उद्धार में बच गए, उसके बाद भी हमारे जीवन में दिन ब दिन परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की जीवन काम नहीं करता, हम निर्बल हैं, लेकिन हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर प्रयास होना चाहिए और तब परमेश्वर हमें उस ओर ले आता है। तो अगर हम उस इनकार करते हैं, उससे हट्टीपन में जीवन व्यतीत करते हैं, उसका विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, तो हमें न्याय का सामना करना पड़ा है। तो एक धार उद्धार की ओर संकेत करता है, दूसरी धार न्याय की ओर संकेत करता है। और ये देवधारी तलवार है। और परमेश्वर उस कलीसिया को लिखकर कह रहा है, पर्गमन की कलीसिया, तू इस बात को ध्यान रख, या तो तू उस उद्धार के आनंद को प्राप्त करेगा या न्याय में जाएगा, उस दंड को पाएगा। और ये हम इसको आगे चल के देखेंगे जब हम इस पर्गमन के पूरी पृष्ठभूमि को और उसके कलीसिया के चित्रण को देखना चाहेंगे। सो अभी मैं उसके अर्थ को नहीं बता रहा या उसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अभी हम पहले पद में हैं, बारह पद है, दो धार तलवार है। वो ये कहता है मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर यहाँ पर भी मेरे और आपके बारे में जानता है, मेरी और आपकी क्या आवश्यकता है, मेरी आपकी क्या समस्या है, मेरी आपका संघर्ष क्या है, मेरे आपके सोच क्या है, मेरी आपकी क्या चिंता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है क्योंकि उसने मुझे और आपको सृजा है, मुझे और आपको बनाया है। वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है, माँ के प्रेम से भी बढ़कर वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। होता है कि माँ अपने एक बालक को भूल जाए, हाँ ये तो होता है, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है मैं तुझे ना भूलूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। माँ अपने बालक को, जन्म दिए बालक को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी चिंता करता है, वो ये चाहता है कि हर एक मनुष्य उद्धार प्राप्त करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो, परंतु वो हर एक को अवसर मिले कि वो उद्धार प्राप्त करे, क्योंकि उस परमेश्वर ने उस मनुष्य को बनाया है, सृजा है, मुझे और आपको सृजा है, उसने अपने हाथों से सृजा है। और इसलिए तब वो कहता है मैं जानता हूं। क्या जानता है? अब वो इस कलीसिया के बारे में कुछ बोल रहा है। तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, वहां तू रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे धीरे से। इसके बाद भी तू मेरे नाम में पर स्थिर है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और तूने मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों से भी इनकार नहीं किया। तूने मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी इनकार नहीं किया। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में देखना चाहेंगे कि किस रीति से जब हम पर्गमन कलीसिया के बारे में देखते हैं तो ये पर्गमन एक नगर है, उस समय एक नगर था। किसने इस कलीसिया को स्थापित किया आप नहीं जानते, लेकिन ये जरूर वहां पर एक शासक था और कॉन्स्टेंटाइन जिसका नाम था, बहुत फेमस शासक कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने बहुत सारी चीजों को अच्छा किया और बहुत सारी चीजों को गड़बड़ किया, मिक्सचर है उसमें, यही चीज को समझना है। तो मैंने इसलिए पिछली बार भी कहा जब हम कोई भी स्थान के बारे में, कोई भी कलीसिया के बारे में, कोई भी नगर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें अध्ययन करना पड़ता है उसकी पृष्ठभूमि के लिए। और बाइबल जो ऐसी पुस्तक है, इसीलिए बाइबल ने कहा कि अगर सारी बातें लिखी जाती है तो संसार में पुस्तक नहीं समाती, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया, अपने लोगों को बुद्धि दी, ज्ञान दिया कि परिश्रम करें, खोजबीन करें और खोजबीन करके ऐतिहासिक रीति से, भौगोलिक रीति से, राजनीतिक रीति से, उन सारी चीजों को खोजबीन करके वो मेरे और आप तक किसी न किसी से पहुंचा दें। और जो बहुत सारी टीका है, कॉमेंट्रीज है, या बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के सेवक हैं जो सारी चीजों को पहुंचाते हैं, उनकी सेवाएं परमेश्वर ने इसीलिए दी और वो मेरे और आपके लिए आशीष का कारण है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ कोई ना कोई सहायक पुस्तक को भी पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो उस समय क्या था, इसमें ये छोटा सा नगर था और छोटे से नगर में इसमें बहुत अच्छे विश्वास थे, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था। वो कह रहा है कि तू स्थिर रहता है और तब कहता है और तूने मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी इनकार नहीं किया। किन दिनों में? तब वो एक व्यक्ति का नाम बता रहा है, अंतिपास। अंतिपास यहां पर एक विश्वासी व्यक्ति है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसको विश्वास के कारण अपने जीवन को देना पड़ा। मेरे प्रिय, जब हम परसिक्यूशन की बात करते हैं, सतावनी की बात करते हैं, अभी भी हमारे देश में ऐसी सतावनी नहीं आई और आने वाले दिन में आ सकती है, लेकिन बाइबल इतिहास इस बात को बताता है कि शुरू से, आरंभ से प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने को वालों को सतावनी का सामना करना पड़ा। ये जब हम विश्वास में आते हैं और कभी थोड़ी सतावनी आती है तो हम अपने आप में इतना अधिक अपने आप को मैं बेचारी सोचने लगते हैं, मैं ही दुख उठा रहा हूं, मेरे ही गांव वाले मुझे बदनाम कर रहे हैं, मुझे ऐसा कर रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे करते हैं, मुझे, मैं सोचता हूं मैं अकेला हूं। नहीं नहीं नहीं, आरंभ से, और आज भी कितने लोग हैं। अभी कुछ वर्ष पहले हमारे भारत देश में एक बाहर के मिशनरी थे, ग्रैम स्टैंड, उनको किस प्रकार से, वो सेवा कर रहे थे, उनके दो बच्चों को गाड़ी में रात में देर में आए, तो उन्होंने सोचा कि मैं अभी अंदर लोगों परेशान ना करूं, गाड़ी गेट के बाहर रखी थी और तीनों जन उस गाड़ी के अंदर सो रहे थे, लोग आए, विरोधी दल के लोग आए, उन्होंने आग लगाई, उनको तीनों जनों को मार दिया। 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, उन्होंने कौन सी हानि करी थी, उनको जला दिया गया, मार दिया गया। और जब उनकी वाइफ और बेटी यहां पर थी तो बाद में उसकी वाइफ ने कहा, उनसे कहा गया आप क्या चाहते हैं, इनको क्या कहा, उन्होंने कहा मैं इनको सजा नहीं दूंगी, मेरे प्रभु ने माफ करना सिखाया है, मैंने इनको क्षमा किया है, जो सरकारी नियम है, जो उनके साथ करना चाहते करें। और इस बात को बताते हैं कि दारा सिंह जब जेल में था तब परमेश्वर ने उससे बात करी, जो मुख्य व्यक्ति था उसने बात करी। वहां पर मैंने उस साक्षी खुद सुना, उस व्यक्ति की, जिस एक दरोगा जो समय बाद में वहां पर गए थे, उसने बाद में प्रभु को पर विश्वास किया, यहां तक कि उसको उड़ीसा में अपनी नौकरी को छोड़ना पड़ा विश्वास करने बाद, लेकिन उसने कहा मैं जान गया हूं यीशु सच्चा है। कितने ऐसे केसेस हैं हमारे भारत में, छोड़ दीजिए दुनिया को, और आज दुनिया के चारों तरफ होते रहते हैं। और ये सतावनी ये कलीसिया में आरंभ से जुड़ी हुई है, अर्थात मेरे और आपके विश्वास को मजबूत होना है। वो कह रहा तूने उस समय तक विश्वास किया जब तेरे बीच में इस व्यक्ति को लोगों ने मार दिया गया। ये कलीसिया छोटी सी कलीसिया थी, ज्यादा बड़ी कलीसिया नहीं थी, ज्यादा बड़ा शहर नहीं था, लेकिन इस कलीसिया के विश्वासी बहुत मजबूत विश्वासी थे, अच्छे विश्वासी थे। लेकिन फिर क्या हो गया, फिर क्या समस्या आ गई? इन्होंने कुछ दिनों तक अपने विश्वास को थामे रखा, बनाए रखा, थोड़े लोग में थे और इनकी साक्षी चारों तरफ फैलती गई और परमेश्वर इनके विश्वास के द्वारा बहुत ही अधिक प्रसन्न था, आनंदित था, और इसलिए परमेश्वर इनकी प्रशंसा कर रहा है। और इसलिए तब आगे चल के कहता है कि तू में, लेकिन मुझे, तब आगे कहता है 13 पद में, तुम्हारे मध्य वहां मारा गया जहां शैतान का निवास है, जहां शैतान का निवास है। अब क्या मतलब शैतान का निवास? अब यहां पर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को, इतिहास को, उनसे ज्योग्राफी स्थिति को देखते हैं। वहां पर जब ये, अब इधर एक और कलीसिया स्थापित की गई, कलीसिया विश्वास में मजबूत थी, विश्वासी लोग बहुत विश्वास करके कलीसिया में आगे बढ़ रहे थे, कलीसिया दिन ब दिन परफेक्टता में चलती जा रही थी, इनको जोश था, विश्वास था, सब कुछ था, साक्षी दे रहे थे और हर मुसीबत का, हर क्लेश का सामना करने तैयार थे। लेकिन धीरे से क्या हुआ, झूठी शिक्षा इनके बीच में घुस गई। अब वो शिक्षाएं कई सारी हैं जो हम अभी देखना चाहेंगे, कई सारी शिक्षा उस पर आ गई। अब उन्होंने इनको डगमा दिया। अब ये कलीसिया धीरे धीरे एक मिश्रित कलीसिया बन गई, एक मिलीजुली कलीसिया बन गई। अब इसमें विश्वासी भी हैं और अविश्वासी भी हैं, और अविश्वासी अब धीरे धीरे इसको नियंत्रित करते चले रहे हैं। ये स्थिति है। अब ये छोटा शहर था, लेकिन इसमें चार ऐसे मंदिर थे जो चारों कोने में बने हुए थे, और इन चारों मंदिर में एक डायना का मंदिर था, डायना के बारे में हम देख चुके हैं, पहला मंदिर था, लेकिन एक और मंदिर था एस्कालिपस का। ये मंदिर अब इस समय में रोमन कैथोलिक का अधिकार बढ़ता चला जा रहा था, ध्यान दीजिएगा, इस समय में 300 के साथ में रोमन कैथोलिक का अधिकार बढ़ता चला रहा था। अब बहुत सारी चीज वहां पर उस समय शुरू हुई जो आज भी हम देख रहे हैं, ये इसी कलीसिया का इतिहास है। अब वो इन लोगों ने, ये जो मंदिर था, इनका यह विश्वास था कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो बीमार तो उस मंदिर में जाए, और उस मंदिर में जाकर के, वहां पर मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं थी, कोई भी फर्नीचर नहीं था, पूरा एक हॉल टाइप का होता था और वहां सांप लौटते थे, और उन लोगों का था कि अगर उनके बीच में जाएंगे और उसको छुएंगे तो चंगे हो जाएंगे। लेकिन उसी के बगल में एक दवाइयों का उपचार करने का वो विश्वालय जिसको सिखाते थे वो भी बना होता, ताकि अगर कुछ होता था तो वहां पर उनका उपचार होता था, और लोग वहां पर आकर झुकते थे, वहां पर आकर। अब वो परमेश्वर को भूल रहे हैं, जिस परमेश्वर ने उनको संभाला है, बनाया, सब कुछ बनाया, अब वो ये मिक्सचर उसमें आता चला है। इसीलिए परमेश्वर को दुखी होकर कलीसियाओं को लिखना पड़ा है, इसीलिए चेतावनी दे रहे हैं, अभी हम चेतावनी हमें आते। और तीसरा एक और मंदिर था डायनासोर, यहूदियों का था। अब यहूदियों का मंदिर दूसरी चीज है। अब यहूदी, कुछ यहूदी थे जो बिल्कुल व्यवस्था मानते थे, लेकिन कुछ यहूदी थे अपने आप को यहूदी तो कहते थे, पिछली बार भी हम देख चुके हैं, पर वो यहूदी नहीं थे, और इसलिए उनके जीवन में भी बहुत सारी चीजें मिली जुली थी, ये सारी चीजें, ये सारे। और इन चारों मंदिरों ने इस नगर को चार तरफ से घेर रखा था, और धीरे धीरे कहा जाता है कि छोटे से नगर में इतना अधिक ज्ञान की वृद्धि हो चुकी थी, या लोग इतना अधिक ज्ञान को ढूंढ रहे थे, या इनका इतने अधिक पढ़ने वाले थे कि वहां पर एक लाइब्रेरी थी जिस लाइब्रेरी में 200,000 पुस्तकें, उस समय 200,000 पुस्तकें, आज से करीब 1500 साल पहले उतनी पुस्तकें उस लाइब्रेरी में थी जो आज अच्छी अच्छी लाइब्रेरी में नहीं होती। ये था क्योंकि लोग सब और सारे ज्ञान को खोजने के चक्कर में, इसीलिए परमेश्वर का वचन, ज्ञान को तो खोजो लेकिन ऐसा ना हो कि तुम्हारा ज्ञान तुमको परमेश्वर से दूर कर दे। ये स्थिति हो रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। और तब उसके बात करके, तो उसी समय कॉन्स्टेंटाइन किंग वहां पर उत्पन्न हुआ, शासक उत्पन्न हुआ। वो अच्छा भी था, बुरा भी था। अच्छा ये था, उसने बहुत सारी चीजों को बनाया, उसी ने ये आराधना के लिए भवन की शेप देकर सबसे पहले आरंभ करवाया। अच्छा, उसने मसीहों को आजादी दे दी, ठीक है तुम अपने विश्वास का पालन करते हो, लेकिन उसके साथ साथ उनको आजादी देने के साथ अपने भी उसने नियम ला दिए, जो वो नियम कि तुम्हें इसको भी मानना है। अब ये विश्वासी लोग, कलीसिया के लोग उस इस आजादी का भी फायदा उठाते हैं, लेकिन उसके नियमों को मानते हैं, और इसलिए धीरे धीरे ये मिशन में आ गए। इसीलिए आगे चल करके बालाम का चित्रण आया, भी मैं हम देखेंगे उसको। ये इसकी कलीसिया की स्थिति थी सब कुछ। और उसने वहां पर उनको समझौते के जीवन को के लिए बाध्य कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर मसीहत में समझौते के जीवन को नहीं चाहता। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया है तो हमें संसार से अलग होना है। उसने कहा मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। पौलुस कहता है मुझे परमेश्वर ने सेवा के लिए अलग किया है। और हम संसार की और प्रभु की दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। और लेकिन अब ये लोग ऐसी बाध्यता में आ गए कि वो इधर आराधना भी कर रहे हैं, प्रभु की उपासना भी कर रहे हैं, प्रभु से प्रेम भी दिखाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरे उन नियमों का भी पालन करना पड़ रहा है। और उसके लिए कुछ लोगों ने कदम उठाया, जिन्होंने विरोध किया या कदम उठाया उनको शायद मृत्यु तक का सामना करना पड़ा, धन का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ ऐसे जो वो उसमें उनमें समझौता करने लगे, इसीलिए तो कहता है स्थिर है मुझ पर विश्वास करने की उन दिनों में इनकार नहीं किया। और क्रांति पर मेरा विश्वस्त साक्षी, अंतिपास उसका विश्वास है, तुम्हारे मध्य मारा गया जहां शैतान का निवास है। अब ये स्थिति आ गई, अब शैतान का निवास वहां आ गया। कलीसिया अच्छी आरंभ हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर वचन को तोड़ा मोड़ा गया, दूसरे लोग अधिकार चलाने लगे। और जैसे मैंने कहा, कॉन्स्टेंटाइन उस समय वहां का ये राजा था और शासक था, और इसने बहुत सारी ऐसी चीजों को आरंभ कर दिया जो कहता है शैतान का राज सिंहासन। तीन बातें समता वहां पर देख सकते हैं शैतान के सिंहासन के संबंध में। पहली बात, ये शासक की उपासना से संबंधित हो सकता है, जो शासक थे वहां उनकी उपासना करनी है। सच्ची आराधना करते हुए भी झूठी आराधना का दबाव उनके पर था, सच्ची आराधना करते हुए भी झूठी आराधना का उनके पर दबाव था। कई बार आज भी हम भारत देश में संसार में ऐसी स्थिति में आते हैं कि ठीक है, मुझे मालूम है जब मैं प्रभु में आया, मेरा एक मित्र था जो जिसके साथ हम रहते थे, उसने कहा बहुत बुरा जीवन था हमारा। जब मैं प्रभु, मैंने कहा भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता, मैं तुमसे अलग रहूंगा। मैंने मेरे साथ चर्च भी गया कि तुम चर्च जाओ, ये भी करो वो भी करो, कोई बात नहीं सिर्फ करो, लेकिन मेरे साथ ना छोड़ो, हम ये मतलब उधर भी करो उधर भी करो। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर का वचन कहता हम दो स्वामी की सेवा नहीं करता। और उसने इतना अधिक, मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरा विरोध करा कि मेरी हॉकी से पिटाई करी, मेरा आज भी माथे में निशान है। मित्र था, लेकिन जब मैंने कहा नहीं मैं इस सात रास्ते पर नहीं चल सकता, मैं दो में से एक ही रास्ते चलूंगा, वो मित्र मेरे विरोध में हो गया। मेरे प्रियो मसीह जीवन में हम चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हों, यदि आप सच्चाई से प्रभु के पीछे जाना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ेगा। या तो चुपचाप होके उसको भी प्रेस करें, उसको भी प्रेस करें, उसको भी प्रेस करें, उसको भी प्रेस करें, और अपने जीवन को व्यतीत करें। और कई बार हम ऐसे ही करते हैं, हम सबको खुश करना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों में, कुछ दिनों पहले दो बहनें आई यहाँ पर, तो आई चर्च अटेंड करा, बाद में हमसे और आंटी से बात करी थी, तो बाद में उन्हें कहने लगे कि अरे हम अगर चर्च आएंगे तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा छोड़ना। तो हम लोगों ने कहा आप वचन को सीखे जानिए, आप खुद मालूम हो जाएगा क्या कि छोड़ना होगा क्या कि नहीं छोड़ना होगा। सो हम अपने घर में कई सारे मूर्तियों को रख के प्रभु यीशु मसीह को भी रख देते हैं, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग जीवन सत्य मैं ही हूं, मैं भी हूं नहीं मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई संसार में उद्धार करता नहीं। और हम दूसरों के साथ लेके नहीं चलते, कई बार हमारे बिजनेस चलते हैं, कई बार हमें दुकानें होती हैं, कई बार कुछ और होते हैं, और कस्टमर आएगा देख के खुश होगा तो हम 10 चीजों के में भी एक चीज और डाल देते हैं। नहीं, हमें सावधान होना है, चीज को समझना है। सो पहली बात। दूसरी बात, वहां पर एक वेदी बनी थी, जेंट्स की वेदी बनी थी। उस समय वो संसार की सबसे बड़ी वेदी मानी जाती, और एक समय में कितने अधिक वहां पर बलिदान उस वेदी पर चढ़ाए जाते थे। और ये वेदी उस ऊंची चोटी पर बनी थी जहां पर नगर से सारे लोग उस वेदी को देख सकते थे, दृष्टि प्रभु की ओर करनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या था, इस वेदी की ओर दृष्टि लोग करते थे। तीसरी बात, वहां पर उनका एक देवता था जिसके नाम के बारे में बता दिया कि जो बीमारियों का उपचार करता था और वो उनके पास आते थे। मेरे प्रभु ये ऐसा है, तो ये कहता है, तो ये बातें उसकी प्रशंसा के लिए लिखी हुई है। लेकिन तब आगे चल करके 14 पद में मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। ठीक है, पहले परमेश्वर उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है, तूने ये सब कुछ कहा, तू स्थिर है, ये सब कुछ है, इनके बीच में तो रहते हुए हमें कहना है, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। क्या कहना है? ये चेतावनी थी, ये वार्निंग थी, ये चुनौती थी उनके लिए। और ठीक इसी तरह से परमेश्वर कह रहा है, जैसे हम किसी तारीफ करते करते थे, लेकिन ऐसा है, परमेश्वर कह रहा है तू ऐसा कर रहा ऐसा कर रहा, लेकिन ये थे। और जैसे ही लेकिन कहता है, वो एकदम चौंकने वाली बात है। अरे क्या है ये, तो कलीसिया संघर्ष कर रही है, ये कलीसिया ये कर रही है, ये कर रही है, लेकिन क्यों ऐसा है? तब वो आगे चल के कहता क्या चीज तेरे बीच में है? और आगे के पद में तब वो समझाना चाहता है ये समस्या तेरे बीच में, उसको समझना। अभी हमने थोड़ा भौगोलिक स्थिति के रूप में थोड़ी चीज को समझाया, लेकिन अब वो वचन की बात को लाता है। क्या लाता है, क्या कह रहा है? परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना, क्या कहना है? क्योंकि तेरे यहां कुछ, सब नहीं, तेरे यहां कुछ ऐसे व्यक्ति हैं। अब मैंने इसीलिए कहा था ये कलीसिया अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए थे जो उसे मिले जुले जीवन व्यतीत कर रहे थे, और उन्हीं लोगों ने इस कलीसिया के नाम को नीचा कर दिया था, कुछ लोग। और मेरे प्रियो मुझे नहीं मालूम परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाह रहा है, उस कुछ में मैं शामिल हूं। मेरा विश्वास, मेरा जीवन, मेरा कार्य, मेरा व्यवहार, मेरी इच्छाएं, मेरा समर्पण, मेरी मनसाएं, मैं क्या उस कुछ में शामिल हूं? आप क्या उस कुछ में शामिल है? कुछ लोग क्यों? कलीसिया आनंद के साथ आगे बढ़ रही है, परमेश्वर की महिमा कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ लोग क्या करें, वो तो क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो विलाम की शिक्षा को मानते हैं। नए नियम में तीन बार विलाम का उदाहरण है। विलाम पुराने नियम में गिनती की पुस्तक में, गिनती की 22 अध्याय में आप आएंगे, मैं कहानी के रूप में थोड़ा समझा दूंगा, गिनती की 22 अध्याय में आएंगे तो वहां से हम देखते हैं 22 अध्याय के 25 अध्याय तक घटना घटना। बालक राजा था, इसराइलों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी और तब लोगों को मालूम चला कि विलाम एक ऐसा परमेश्वर का जन है कि अगर वो जाएगा तो वो जो कुछ कहेगा परमेश्वर उसके सुनेगा और वो उनके लिए पूरा हो जाएगा। और ये बालाक ही चाहता था कि इसराइलों किसी रीति से वो वहां से उनका अधिकार खत्म हो जाए या वो नाश हो जाए या वो बर्बाद हो जाए, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि इसराइलों पर थी। और तब जब बालाक विलाम के पास खबर भेजता है और उसको बुलाता है कि तू आ और आकर इन लोगों को शाप दे, इन लोगों को शाप दे क्योंकि ये बहुत बढ़ रहे हैं और इससे मेरे राज में खलबली मच रही है, और तू चाहता था कि उनको शाप दिया जाए और उन खत्म हो। तब ये विलाम, मैं तुझे इतना इनाम दूंगा, मैं तुझे ये उपहार दूंगा, मैं तो उसने अपने सेवकों को भेजा था उसके पास। तो विलाम ने सोचा कि ठीक है, तो प्रार्थना की परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे बुलाया जा रहा है, परमेश्वर क्या कभी चाहेगा? पर वो जानता है कि परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर है, वो जानता है कि परमेश्वर इसराइल से प्यार करता है, वो जानता है कि परमेश्वर ने कहा इसराइलों को मैं तारा की गण के बढ़ाऊंगा, फिर भी ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्या मैं वहां जाऊं, क्या मैं वहां जाऊं? क्यों प्रार्थना कर रहा है? उसका मन उन वस्तुओं पे लगा हुआ है जो राजा उसको देने के लिए तैयार है, क्योंकि राजा ने कहा था मैं ये सामान भिजवाया भी था अपने नौकरों के हाथ, और 22 अध्याय से पढ़ेंगे गिनती 22 अध्याय से आपको पूरा मालूम चलेगा। और तब उसके बाद तब ये चल देता है, लेकिन परमेश्वर से बातचीत करता है, परमेश्वर से बातें, परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा है। तो विलाम 7 बार वेदी बनाता है और वेदी बना करके 7 बार परमेश्वर से पूछता है, और उसी यात्रा के बीच में परमेश्वर को तरह तरह समझाना चाहता है, यहां तक कि जो गधी के ऊपर बैठकर एक छोटी सी गुफा में से निकल कर जा रहा था, वो गधी दीवाल से लगड़ती है और विलाम का पांव भी दीवाल से रगड़ जाता है, और तब विलाम जो है उसको छड़ी से गधी को मारता है, और तब गधी बोल पड़ती है, और गधी बोल पड़ती है, आपने बच्चों को कहानी सुनी होगी बार बार इसको, गधी बोल पड़ती है, कहती मैंने तेरी कौन सी हानि करी है, मैं अभी तक तेरी अच्छी तरह सेवा करी है, लेकिन तूने मुझे साथ ऐसा किया। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता था कि विलाम जा करके वहां पर इसराइलों को किसी प्रकार से शाप दे। परमेश्वर उसको समझा रहा है, परमेश्वर उसको रोक रहा है, कई तरह से उसने रोकने की कोशिश करी, लेकिन विलाम क्या कर रहा, बार बार वेदी बना रहा है और बार बार परमेश्वर से पूछना चाह रहा है। परमेश्वर ने कहा जा, जब वो नहीं माना तो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, चला गया, और जाके वो फिर भी वो शराब शाप नहीं दे पाया, और तब उसका नाम एक झूठे भविष्यद्वक्ता के रूप में आ गया। और तब प्रकाश वाक्य में हमने पढ़ा है पत्रस 2:15 में उसको कहा गया है वो अधर्म की मजदूरी को लेने वाला है, वो मजदूरी जो अधर्म की है, जो सच्ची नहीं है, परमेश्वर नहीं चाहता। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको सावधान रहना, हम अगर हम ऑफिस में काम करते हैं, कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं काम करते हैं, और किसी के काम को करने के लिए हम घूस लेते हैं, तो ये अधर्म की मजदूरी है। मेरे प्रियो विश्वासियों, कभी घूस नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए, सावधान नहीं है। अरे उसने तो दे दिया, नहीं भैया माफ कीजिए, मेरे को तनख्वाह मिलती है, मुझे सब कुछ मिलता है, जो मेरे लिए करा गया वो है। हमें अपनी सेवा को देना है, अधिक दूसरों से बढ़कर सेवा को देना है, जिसे भी किसी तरह। अब और ऑफिस में आकर आप फाइलों को आगे बढ़ाते हैं, जब तक आप नीचे 100 रुपए रख के नहीं देंगे आपकी फाइल नहीं बढ़ेगी, तो आप उसके उस बदनामी में आइए, अधर्म की कमाई है। और ये ऐसे ही उसने करा, ऐसे ही उसने करा, अधर्म की कमाई उसके, उसको यहूदा में कहता है, यहूदा 11:1 उसके 11 पद में कि धिक्कार है उस पर, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है धिक्कार। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन अगर प्रेम करता है, परमेश्वर का वचन प्रोत्साहित करता है, तो परमेश्वर का वचन चुनौती भी देता है, परमेश्वर का वचन चेतावनी भी देता है, और मुझे और आपको बहुत अधिक सावधान होना है। अब यहां पर ये विलाम जो झूठा शिष्य, क्यों उसको कह लिया है, जिन्होंने विलाम की शिक्षा पर, क्या विलाम अधर्म की कमाई वाला व्यक्ति था, विलाम धिक्कार व्यक्ति था, विलाम परमेश्वर के सुनने के बाद भी उसको इग्नोर कर रहा था, परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद भी उसको टाल रहा था, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम आज परमेश्वर की आवाज को सुनो तो उसके प्रति प्रत्युत्तर सकारात्मक दो। मेरे प्रिय, मुझे और आपको बहुत अधिक सावधान रहना है,
ये यहाँ पर कह रहा है कि क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो विलाम की शिक्षा को मानते हैं, जो बालक को सिखाता रहा और इसराइलियों को ठोकर खिलाए, कि इसराइलियों को ठोकर खिलाए, वे मूर्तियों पर चढ़ाई वस्तुओं को खाएं और वे विचार करें। जबकि इसको बालक को स्पष्ट बोलना चाहिए था, मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है और मैं ऐसा नहीं करूंगा। और मेरे प्रियो, लेकिन उसने क्यों उसका ध्यान धन संपत्ति पे लगा था। मेरे प्रियो, सचमुच हमें संसार में धन चाहिए, हमें संपत्ति चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं, लेकिन सही तरीके से परिश्रम करके। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। आप किसी की मजदूरी को मत मारिए। अगर आप किसी मजदूर की मजदूरी मारते हैं तब भी आप गलत करते हैं, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। किसी को उसकी मजदूरी के लिए सताइए नहीं, परेशान मत करिए। 10 बार अपने दरवाजे बुला लें, कल दे देंगे, परसों देंगे, नहीं, आपको उसको देना तो दीजिए। इस छोटी छोटी चीजें हमें मसीह जीवन में सीखनी है, ये व्यवहारिक बातें सीखना है। मैंने एक बात, रिक्शे पे आप चल रहे हैं, रिक्शा बेचारा ले जा रहा है, मुझे एक बात देख के बहुत ताज्जुब हुआ, चल रहे 3 जन मोटे मोटे बैठ गए और उसको देना था 25 रुपए, दूर तक ले गया, पसीने पसीने ले गया, जब आए 10 रुपए, उसका बाबू जी 10 रुपए कम है, बस बेचारा लेके भी जा रहा है, उसको देना है, लेकिन फिर दुकान में सामान लेने जाएंगे, दुकानदार कहेगा कि सामान इतने का है, वहां दे देंगे, वहां से नहीं करेंगे, भक नहीं करेंगे, क्योंकि दुकान देगा तुम दूसरी दुकान पर जाओ, लेकिन मजदूर को हड़का कर भगा देंगे। गलत है ये विश्वासियों का जीवन ठीक नहीं है, इस बात को सीखना है। और ये बहुत चीजें, जब विलाम की अभी मैंने बहुत थोड़ी बात बताई, लेकिन जब आप इस पूरे 3 अध्याय को 4 अध्याय को पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज उसके में सीखने को मिलेंगी, जो व्यवहारिक शिक्षा है एक मसीही विश्वासी को किस प्रकार से चलना है। और इसीलिए कहता है तू उनकी शिक्षाओं पर ध्यान दे रहा है, तेरे यहां कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, कुछ ऐसे लोग जो तू शिक्षा को ध्यान दे रहे हैं, परमेश्वर को अब अलग कर रहे हैं और इसको कर रहे हैं। तब आगे चल के कहता है, ना केवल इतना, जो मूर्तियों पर चढ़ाई की वस्तु खाएं और वह विचार करें। यौन का पाप सबसे भयंकर पाप है। विवाह से पहले किसी प्रकार से यौन संबंध करना पाप है। एक स्त्री को छोड़कर परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है, एक पुरुष एक स्त्री, एक स्त्री एक पुरुष, परमेश्वर बनाया है। अगर आपका विवाह है तो आप दूसरे के ऊपर दृष्टि मत करिए, दूसरे संबंध स्थापित मत करिए, दूसरे तो पास मत दौड़िए, पाप है ये। प्रभु के साथ भी चल रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, और कितना लोग हैं जो इसी पाप में गिरे हुए हैं। और मुझे और आपको सावधान रहना है, सेवकों के लिए हम बार बार सेवक को चिताते हैं, वो कई बार अपने घर को इतना इग्नोर करते हैं कि उनको उनकी पत्नी बेचारी रोती है, सफर करती है, दूसरों के लिए टाइम उनके पास बहुत ज्यादा होता है, अपने घर के लिए टाइम नहीं होता। हमें देखना समझना प्रभु, और ये पाप धीरे धीरे किस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं। वो कह रहा है ये पाप तुम्हारे बीच में राज कर रहा है, और मुझे और आपको सचेत रहना है। मेरे प्रभु परमेश्वर मुझे और आपको सावधान करें। कई बार हमारे अंदर बोझ इतना होता है कि हम अधिकतर बहनों को सिखाना चाहते हैं, भाइयों को नहीं सिखाएंगे, बहनों को ज्यादा सिखाना चाहेंगे। गलत है ये। अगर आपको बहनों को सिखाना, तो आपकी पत्नी आपके साथ होनी चाहिए, अकेले ना बैठिए। मैंने अपने जीवन में आराम से कुछ सिद्धांतों को बनाया हुआ है, और उन सिद्धांतों में परमेश्वर ने आज तक मुझे सावधान रखा है। एक बार एक बहन बहुत बुरा मान गई, सुबह सुबह आ गई, मैं कमरे से बाहर निकल के ऑफिस में अपने 12 बजे में बैठा हुआ था, और मैं उठ के एकदम से बाहर आ गया, वो अचानक आई, और जब मैं बाहर आ गया तो उसको बहुत बुरा लगा। मैंने उसे कहा कि आप जाइए, शाम को आइएगा, जब आंटी आएंगी तब आइएगा, या फिर अपने पति को लेकर आइए। वो इतना गुस्सा हो गया मेरे से, मैं इनके पास आई हूँ, मुझे मुझसे बात नहीं करनी थी यार। सो नहीं, लेकिन हमें अपने जीवन में कुछ सिद्धांतों को बना के चलना है, चाहे कहीं भी हम। हमारे सिद्धांत हमारे पैसे के लिए, हमारे सिद्धांत हमारे नैतिक जीवन के लिए, हमारे सिद्धांत हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, हमारे सिद्धांत अपने कार्य और टाइम के संचालन के लिए बहुत होने चाहिए। ये सारी चीज़ हमें सीखना है। और क्योंकि हम मसीह हैं, विश्वासी हैं, हमें ईमानदारी के साथ अपने जीवन को लेना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि तलवार के जो दूसरी धार है वो मेरे और आपके ऊपर पड़ जाए, मुझे और आपको सचेत होना है। तब आगे चल करके वो कहता है 15 पद, इसी प्रकार तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। पंपू पहले भी देख सके थे ये निकोलियों की शिक्षा क्या है, इफिसियों में भी यही बात को कहता है, निकोलियों की शिक्षा किस प्रकार से उन्होंने मनुष्य को मध्यस्थ बना लिया था। निकोले कहते थे ठीक है, मनुष्य के माध्यम के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, ऐसा नहीं, केवल यीशु मसीह हमारा उद्धार का माध्यम है और कोई नहीं है। लेकिन कई बार किसी गुरु को, किसी पुरोहित को, किसी और को, किसी और चीज को, किसी और को बना लेते हैं। इस बात में माफ कीजिएगा, मैं बता रहा हूं लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं। क्यों हम रोमन कैथोलिक से डिफर करते हैं? इसलिए कि वहां पर अगर आपको पापों की क्षमा चाहिए तो आप फादर के पास जाइए, उनसे मांगिए, और तब फिर वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए आपको दंड देंगे, जो कुछ करना करें। हमारा मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है, मरियम नहीं है, कोई और नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। हमें इसको समझना है। और यहां पर ये सारी चीजें हो रही थी और उसी समय में कुछ चीजें हुई थी। इसी काल में देखिए क्या हुआ था। तब मैंने कहा अर्जेंट टाइम बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीजें उसने आजादी दी, लेकिन फिर भी उसने क्या करा, ये उसी के समय में 300 में मृतकों के लिए प्रार्थना करना आरंभ हुआ। मृतकों के लिए प्रार्थना, अगर मर जाए दफना रहे तो उसके लिए, मृतक के लिए हम प्रार्थना। आज भी लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, 2 नंबर 4 नंबर कोई ऐसा नंबर कोई है ना, सफाई करना एक अलग बात है, लेकिन वहां खड़े के बत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना, क्या कर रहे हैं आप, मोमबत्ती जला रहे हैं। मैंने अपने घर में कह रखा है जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, मृत्यु कलीसिया को भी कहना चाहता हूं, एक भी मेरे ऊपर फूल ला के कोई नहीं चढ़ाएगा। मैंने अपने घर में कह रखा है, मट्टी में डाली आइएगा, दोबारा जाइएगा नहीं कब्र में। क्या है, हम मट्टी है, मट्टी में मिल जाए, हमारी पास एक आशा है। अगर हम फूल चढ़ाते, फूल किसको चढ़ाते हैं, क्या करते हैं, जिंदा हो तो माला पहना दीजिए, मरने के बाद फूल मत पहनाइए, फूल मत चढ़ाइए, आप पूजा कर रहे हैं, गलत है ये, है ना। अब तो मर गया, किसको आप कर रहे हैं, जिंदे में जो कुछ करना कर लीजिए। किसी ने कहा जीते बाप को जूता लात, मरे बाप को दूध बात। जब तक जो बाप जिंदा है जब तक कुछ कर करें, मरे बाप को सब कुछ करें, वो ना करिए, वो क्या देख रहे हैं, वो कुछ नहीं देख पा रहे हैं। सिद्धांतों को, बाइबल को सिद्धांतों में समझना चाहिए। कुछ बातें आपको कड़वी लगती होंगी, लेकिन कभी कभी डॉक्टर कड़वी दवाई भी देता है, वो ज्यादा फायदेमंद होती है। हमेशा मिठास के चक्कर में मत आइए, देखना में समझना है। ये परमेश्वर के वचन है, सच्चाई के साथ है, गंभीरता के साथ है, हमें सीखना है। इन्होंने उस समय शुरू करा संतों को और सरदूतों की आराधना करना शुरू करा, ये वही समय था। आज भी उपाय आता है संतों की आराधना और सरदूत की आराधना। मांस जो प्रभु भोज है वो एक प्रसाद है और इस प्रसाद को हमें लेना है क्योंकि इसके द्वारा हमें आशीष मिलेगी। यहां पर क्या कहा जाता है कि इसके द्वारा हमें दंड भी मिल सकता है अगर हम गलत रीति, परमेश्वर कहता है यदि हम अनुचित रीति से रहे। सो ये सब चीज, सारी चीज उस समय आई। मरियम की उपासना, पाप मोचन का सिद्धांत, ये सारा उसी समय था। यही कह रहा है कि तेरे बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने इन चीजों को आरंभ कर दिया है, और इसलिए सावधान रहे, ध्यान रखिए। संसार कदापि विश्वासी से प्रेम नहीं कर सकता, ध्यान दीजिए, जब तक एक विश्वासी स्वयं संसार के समान ना हो जाए। संसार कभी विश्वासी से प्रेम नहीं करता जब तक एक विश्वासी स्वयं संसार के समान ना हो जाए। जिस दिन आप संसार के समान हो जाएंगे आपसे बहुत लोग प्रेम करने लगेंगे, लेकिन जितना अधिक संसार से आपका हटते जाएंगे उतना अधिक लोग आपसे भी दूर होते चले जाएंगे। हम जानबूझ के लोगों से बैर नहीं करते, जानबूझ के लोगों से दूर कर, लेकिन जब मसीह में आते हैं हमारा दायरा बदलता जाता है। संसार के लोगों से हमारा घटता जाता है, प्रभु के लोगों से बढ़ता चला जाता है। हमारे विश्वास, हमारे परिवार में हमारे प्रभु के लोग बढ़ते चले जाते हैं, वो हमारा परिवार है, बढ़ता चला जाता है। तब वो कहता है 16 पद, अतः पश्चाताप कर अन्यथा मैं शीघ्र मैं तेरे पास आ रहा हूं और अपने मुख की तलवार से उनसे युद्ध करूंगा। वो कह रहा है मैं शीघ्र आऊंगा और अपने मुख की तलवार से मैं उनका नाश करूंगा, मैं उनको दंड दूंगा। सचेत कर ले, पश्चाताप कर ले, मन फिरा ले। और परमेश्वर के वचन का सिद्धांत यह है, हमें पश्चाताप करना सीखना है, हमें मन फिराना सीखना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का यही प्रचार था, पश्चाताप करो, मन फिराओ, लौटा। प्रभु यीशु मसीह का यही प्रचार था, पश्चाताप करो, मन फिराओ, लौटा। प्रेरित का यही संदेश था, पढ़कर देखिए, पश्चाताप करो, मन फिराओ, लौटा। यह है। और उस समय प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए कह रहा है पश्चाताप करो, पश्चाताप करो कि तुमने गलत किया है, अपने अपराधों को मान लो, अपने अपराधों परमेश्वर से मान लो और लौट जाओ क्योंकि मैं आने वाला हूं। अब यहां पर आप देखेंगे, अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अब धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाएंगे। अब पहली बार यह आया, मैं शीघ्र आऊंगा, अब उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। अब वो आने वाला है, अब उसका आगमन नजदीक हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन अब नजदीक होता चला रहा है। मेरे प्रियो ये बात ध्यान दीजिए कि वो घटनाएं जो ये होगा, ये घटना ऑलरेडी चल रही है, जरूर उसके आगमन जब नजदीक होगा ये घटनाएं और अधिक बढ़ती चली जाएंगी और अलग अलग घटनाएं होती चली जाएंगी जिनको बाइबल बताती है, जो हम प्रकाश वाक्य की पुस्तक में बहुत कुछ को पाते हैं आगे। क्योंकि पहले 5 अध्याय जो हैं, वो पहले 5 अध्याय एक ऐसे अध्याय हैं जिसमें 3 अध्याय तक कलीसिया के बारे में, फिर 4थे और 5वें अध्याय में परमेश्वर की महिमा के बारे में, पुत्र की महिमा के बारे में, उसकी आराधना के बारे में, तब 6 अध्याय से फिर और भेद की बातें खुलती हैं जो भविष्य संबंध में है कि अब ऐसा होगा, ये होगा, ऐसा होता चला गया। और उन घटनाओं को हम देखते चले, वो उस समय से आरंभ हुई और बढ़ती चली आ रही है, बढ़ती चली जाएंगी, इसको हमें देखना है। तो प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है, तो वो कह रहा है कि मैं शीघ्र तेरे पास आ रहा हूं और अपने मुख की तलवार से, जिसके सुनने के कान हो सुन ले, कि आत्मा कलीसिया से कहता है जो जय पाए उससे मैं गुप्त मन्ना दूंगा, मन्ना आरंभ में परमेश्वर ने इसराइलियों को दिया। जब इसराइल लोग यात्रा कर रहे थे तो यात्रा करते हुए लोगों को दिया, रोज ताजा मन्ना बटोरते थे और उसी को खाकर वो तृप्त होते थे। और परमेश्वर का जो वाचक का संदूक बनाया गया था उसमें ये मन्ना रखा गया था। अगर वे लोग रखते थे मन्ना तो दूसरे दिन वो सड़ जाता था, क्योंकि परमेश्वर को रोज मन्ना देता था। लेकिन असली मन्ना प्रभु यीशु मसीह है। पर प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहा है कि मैं मन्ना दूंगा, अर्थात उसका वचन है जिसके द्वारा मैं और आप प्रतिदिन संभाले जाएंगे, जिसके द्वारा मेरा और आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा, जिसके द्वारा मैं और आप और बलवंत होंगे, जिसके द्वारा मैं और आप फलीपुंत होंगे। वो मन्ना जो परमेश्वर का वचन है, यूहन्ना उसके 6 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब रोटी खिलाई तो उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। तो उसने वो दिखाया कि तुम इस मन्ने से केवल तृप्त नहीं होते, लेकिन असली मन्ना मैं हूं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो अपने वचन से, अपने मन्ने के रूपी वचन से, रोटी से मुझे और आपको संतुष्ट करेगा, तृप्त करेगा, भरपूर करेगा। कितने सुंदर आशीष! संसार की चीजें हमें संतुष्ट नहीं करते, लेकिन हमारा प्रभु मुझे और आपको संतुष्ट करने के लिए तैयार है, तृप्त करने के लिए तैयार। तब उसके बाद एक और आशीष है, बहुत बड़ी आशीष है। वो कह रहा मैं उनको एक नया नाम दूंगा। मुझे और आपको नाम नहीं मालूम, मेरा और आपका नाम शायद मेरे माता पिता ने, आपके माता पिता ने दिया है, ठीक है, लेकिन हम अपने बच्चों के नाम देते हैं। पर वो नाम तब मुझे और आपको वो नाम से नहीं पुकारा जाएगा जो मेरे और आपके माता पिता ने दिया है, लेकिन वो स्वयं मुझे और आपको नाम देगा। और वो नाम के लिए लिखा हुआ है वो जिसे प्राप्त करने वाले अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानेगा। वो नाम जो नाम दिया जाएगा दो जन जानेंगे, नाम देने वाला जानेगा और नाम पाने वाला जानेगा। कितने अद्भुत बात, कितनी बड़ी आशय है। ये नाम तो हम, इस नाम में तो हम संसार में बदनाम हो गए हैं, इस नाम ने तो हमें पाप में धकेल दिया है, इस नाम ने तो हमारी हानि करी है, इस नाम ने तो हम ऐसे हो गए कि जो नाम बेकार हो गया है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा। कितनी बड़ी आशय है वो नाम। अब मुझे नहीं मालूम, आप नहीं जानते कि कौन सा नाम उसने मेरे लिए या आपके लिए चुनकर रखा है, लेकिन कितनी बड़ी आशीष है। और वो आशीष वो है, वो नाम केवल आप जानने पाएंगे अगर आपको मिलेगा, मैं जानने पाऊंगा, मैं मिलूंगा, और उसके साथ साथ वो जो देगा। सो जो परमेश्वर देगा कितना अद्भुत का। जब माता पिता बच्चों को नाम देते हैं बहुत खुश होते हैं, अरे हम नाम दिया, वो कोशिश करते हैं उस नाम के अनुसार बच्चे आगे बढ़े। सो ये है, तो परमेश्वर सहायता करें। तो ये परगुण की कलीसिया की स्थिति थी। मैंने बहुत संक्षिप्त में इसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन सबसे बड़ी बात वो विलाम की शिक्षा के पीछे थे, एक अच्छी कलीसिया। और मेरे प्रिय, इसके जीवन में मैं और आप क्या ले सकते, प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में अच्छा काम आरंभ किया, हमने अच्छी मसीह दौड़ आरंभ करी, लेकिन आज ऐसा तो नहीं है कि उस अच्छे काम में कुछ और चीज घुस गई हो, कोई समझौता आ गया हो, कोई दूसरी शिक्षा आ गई हो, कुछ और आ गया हो, तो मेरा और आपका जीवन जो परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ा था कहीं रुक गया। अब किसी ने मेरे और आपके जीवन को रोक दिया है और वो अपने जीवन में लेकर के मुझे और आपको परमेश्वर से दूर करा है। और इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारे में कुछ ऐसे लोग हैं। तो मुझे और आपको जांचना अपने आप को कि मेरे और आपके जीवन में जो कार्य प्रभु ने किया है, परमेश्वर का वचन कहता है जो अच्छा काम तुम्हारे प्रभु ने किया है तुम्हारे जीवन में क्या है, फिलिपियों का 1:6, वो मसीह यीशु के दिन तक पूरा किया जाएगा, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। मसीह यीशु दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको लेने आएगा उस दिन तक वो पूरा करेगा। अच्छा काम, मेरे उद्धार का कार्य एक अच्छा काम है, पापों से छुटकारा देने का अच्छा काम है, परमेश्वर के संतान बनने का अच्छा काम है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ने का अच्छा काम है, अच्छा काम आरंभ किया है, विश्वास में बढ़ने का अच्छा काम है, परमेश्वर के वचन में रुचि रखना ये अच्छा काम है। बहुत सारी बातें आप लिस्ट बना सकते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, क्या अच्छा काम उसने मेरे और आपके जीवन में किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे आपसे प्रेम करता है। कितना अद्भुत हो कि वो अच्छा काम जो उसने शुरू किया है वो मेरे और आपके जीवन में बढ़ता चला है, ताकि एक दिन हम जब जय पाएं तो उस नाम को पा सकें जो अद्भुत नाम होगा। उस नाम की प्रतीक्षा करें, उस नाम के लिए जिज्ञासा रखें, उस नाम के लिए प्रार्थना रखें। और मेरे प्रियो, कोई भी मेरे और आपके जीवन में कोई दूसरी चीज प्रवेश करके मेरे और आपके जीवन में हानि न करने पाए। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे और आपको वो जीवन दे कि हम उस दिन तक पहुंचे। इस कलीसिया के समान नहीं, इस कलीसिया में विलाम की शिक्षा से सावधान रहें, पर हम तैयार पाए जाएं ताकि हम उस नाम को पा सकें जो उसने मेरे और आपके लिखा है। आइए हम प्रार्थना करें।